मेरे प्रिय साथियों नमस्कार। आज 2 नवंबर 2018 है और आज के इस afis.com के लाइव मैनेजमेंट में मैं डॉक्टर विजय अग्रवाल आप सभी का हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। मित्रों, कुछ ही दिनों के बाद पूरा हिंदुस्तान और हिंदुस्तान के बाहर बहुत से देश, बहुत से लोग दीपावली का त्यौहार मनाएंगे। इसलिए मुझे लगा कि आज, जबकि मुझे कुछ शेरों, शायरी, गीत इन सब को आधार बनाकर लाइफ मैनेजमेंट के बारे में कुछ बातें करनी है, तो मैं क्यों नहीं राम से जुड़े प्रसंग का कोई अंश लूं और उसके आधार पर फिर आप सबसे लाइफ मैनेजमेंट के बारे में बातें करूं। तो मित्रों, आप ये बताइए कि अगर आपको ये फैसला करना हो तो आप किस पुस्तक का चयन करेंगे, किस ग्रंथ का चयन करेंगे? और मुझे पूरा विश्वास है कि अगर फटाक से आपको उत्तर देने के लिए कहा जाए तो आप सब यही कहेंगे, रामचरितमानस। तो मित्रों, मैंने भी यही किया है। मेरे दिमाग में भी तुरंत बात आई कि नहीं, रामचरितमानस के किसी प्रसंग को लेकर के चर्चा की जानी चाहिए। तो फिर सवाल उठा कि अब रामचरितमानस के किस प्रसंग को, क्योंकि रामचरितमानस के ज्यादातर प्रसंग तो आप सबको मालूम ही हैं। सबने रामलीला देखी हुई होती है, रामचरितमानस पढ़ा भी होता है, सुना भी होता है बचपन में, उसकी कथाएं माता पिता, हमारे दादा दादी, नाना नानी, मामा मामी सुनाते भी हैं। तो ढेर सारी चीज बातें तो आपको मालूम ही होती हैं। फिर मुझे लगा कि नहीं, एक प्रसंग है जो बिल्कुल थोड़ा सा शायद एकदम नया सा हो और अनजाना भी हो, तो उसकी चर्चा मैं आज करूं। और इसलिए भी मैंने इस प्रसंग को चुना कि क्योंकि इस प्रसंग का संबंध प्रेम से है, प्रेम से। और मेरे जो युवा साथी हैं, इससे सुंदर प्रसंग की कल्पना वो कर ही नहीं सकते कि प्रेम की बात की जा रही है और वो भी भगवान राम के प्रेम की बात की जा रही है। तो इससे अच्छी बात क्या हो सकती है, और वो भी दीपावली से कुछ समय पहले की जा रही है। तो मित्रों, मैं भगवान श्री राम के प्रेम की बात कर रहा हूं, और याद रखिए ये रागात्मक प्रेम ही है ना, वो ईश्वरीय प्रेम, अलौकिक प्रेम की बात मैं नहीं कर रहा हूं। और लेकिन हाँ, ये जरूर है कि आप देखिए कि इस प्रेम में कैसे एक अलौकिक शक्ति है। मैं राम के उस प्रेम की बात कर रहा हूं जिस प्रेम को उन्होंने अपनी शक्ति में परिवर्तित कर दिया, और शक्ति में परिवर्तित करके जिस प्रेम को वो पाना चाहते थे उसको उन्होंने पा लिया। हालांकि जब राम के बारे में इस तरह की हम बातें करते हैं तो लोगों को थोड़ा सा पचता नहीं है। मित्रों, अब पचे या न पचे, देखिए ग्रंथ में लिखा हुआ है, आप शुरू में जाकर के देखिए कि जब राम और लक्ष्मण जनकपुरी में गए हुए हैं विश्वामित्र जी के साथ, और सीता को देखते हैं, सीता भी उद्यान में आई हुई है, सुबह 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 फूल तोड़ने के लिए जाते हैं, तो सीता को देखने के बाद राम क्या कहते हैं, राम कहते हैं, जासु बिलोक की अलौकिक शोभा, सहज पुनीत मोर मन शोभा। सोच करके देखिए कि जो मेरा मन है वो तो सहज ही बहुत पवित्र है, सहज पुनीत, मतलब मुझे अपने मन को नियंत्रित नहीं करना पड़ता, उसके पवित्र भाव को बनाए रखना नहीं पड़ता, वो तो है ही ऐसा। इतना पवित्र मन जो सहज में ही पवित्र है, वो जासु विलोक की अलौकिक शोभा, जासु सीता, सीता जी की अलौकिक शोभा को देख करके मेरा मन विक्षुब्ध हो गया है। कंकन किंकिन नूपुर धुनी सुनी, आपने ये सब पढ़ा होगा। तो देख रहे हैं मित्रों कि यहां राम का जो हमें स्वरूप दिखाई दे रहा है वो बिल्कुल मानवीय वाला स्वरूप है। और याद रखिए कि यहां जो जासु विलोक की अलौकिक शोभा कह रहे हैं, वो सुंदरता नहीं कह रहे, सुंदरता और शोभा में फर्क होता है। सुंदरता तो ठीक है कि चीजों को सजा करके रख दीजिए तो वो सुंदर हो जाएंगे, लेकिन शोभा, शोभा तो प्रभाव होता है, सुंदरता का जो प्रभाव होता है वो शोभा है। हो सकता है कि चीजें बड़ी सिंपल तरीके की हो लेकिन उसका प्रभाव बहुत जबरदस्त हो, तो यहां वो प्रभाव की बात कर रहे हैं, शोभा की बात कर रहे हैं। रामचरितमानस में शोभा ही लिखा गया है, वो शोभा नहीं लिखा गया है ना, वो उस समय की हिंदी है। तो मित्रों, अब धनुष तोड़ना है, अगर आपको इस अलौकिक शोभा को प्राप्त करना है तो अब आपको धनुष तोड़ना पड़ेगा। इस प्रसंग को आप जानते हैं, और मित्रों मैं इसी प्रसंग की आपको यहां थोड़ी सी व्याख्या करके बताने जा रहा हूं। थोड़ी सी चूंकि मुझे पृष्ठभूमि बतानी थी तो उसकी चर्चा मुझे करनी पड़ी। अब आप देखिए कि जब राम धनुष तोड़ने के लिए उठते हैं, यहां से मैं ले रहा हूं, तो मुझे थोड़ी सी कुछ उनकी जो चौपाइयां हैं वो और जो दोहे हैं उसे आपके सामने रखने की इजाजत दीजिए। और इजाजत मैं इसलिए ले रहा हूं ताकि आप मेरी बात पर भरोसा कर सके, नहीं तो लोग कह देते हैं कि यार अपनी तरफ से कुछ जोड़ दिया होगा। तो मैं आपसे इजाजत चाह रहा हूं, और मैं ये भी आपको बताना चाहूंगा कि आप बकायदे बाल कांड उठाएं रामचरितमानस का, और मैं जहां से शुरुआत कर रहा हूं उसकी संख्या है 260, दोहाइए 260वां है ना, इसके बाद फिर मैं चौपाइयों पर आऊंगा। तो 260 से आप आगे पढ़ लीजिएगा तो आपको मिल जाएगा। और वैसे भी चूंकि शेर व शायरी गीत का अवसर है आज, तो मुझे कुछ न कुछ तो पंक्तियां बोलने की इजाजत है ही, तो इसे ध्यान से सुनिए मित्रों। राम बिलो के लोग सब चित्र लिखे से देखी, चितय सीय कृपा यतन, चितय सीय यानी कि वो सीता को चितय कर रहे हैं। राम अब उठ चुके हैं धनुष तोड़ने के लिए, अब जा रहे हैं धनुष तोड़ने, तो अब आप देखिए कि क्या कर रहे हैं, चितय सीय सीता को चितय कर रहे हैं। याद रखिए यहां देख नहीं रहे हैं, चितय कर रहे हैं, इसका अर्थ मैं अब आपको बताऊंगा। चितय सीय कृपा यतन जान विकल विशेषी, इसके बाद फिर चौपाई है, देखी विपुल विकल वैदेही, निमिष बिहात कलप समते ही, त्रिषित बारी बिनु जो तनु त्यागा, मुए करई का सुधा तड़ागा, का बरसा सब कृषि सुखाने, समय चूके पुनिका पछताने, अस जिय जानी जानकी देखी, जानकी देखी प्रभु पुल के लखी प्रीति विशेषी। अब मैं आता हूं मित्रों इसकी व्याख्या पर, और आप इसको सुनने से पहले चाहें तो आप रामचरितमानस का बालकांड का ये हिस्सा खोल लें ताकि मेरी बातों को आपको समझने में और ज्यादा आसानी हो जाएगी। अब आप देखें कि हम यहां क्या क्या पा रहे हैं मित्रों। जहां राम अभी बैठे हुए हैं और जहां से उठकर जा रहे हैं, कल्पना कीजिए कि वहां कौन कौन और लोग बैठे हुए हैं। सीता के पिता राजा जनक बैठे हुए हैं, सीता की मां सुनैना बैठी हुई है, उनके अपने गुरु विश्वामित्र बैठे हुए हैं, छोटे भाई लक्ष्मण बैठे हुए, इन सबको तो आप जानते हैं, और दुनिया भर के राजा महाराजा, मतलब देश भर के राजा महाराजा आए हुए हैं, वो सब बैठे हुए हैं। और इसके बावजूद आप सोच करके देखिए राम क्या कर रहे हैं, चितई सी सीता को देख भी रहे हैं, सीता को विलोक भी रहे हैं और चितई भी कर रहे हैं। आपको नहीं लग नहीं रहा कि ये राम ये कर क्या रहे हैं, उनको संकोच नहीं हो रहा है सीता को इस तरीके से देखने का? सोच करके देखिए, यहां सोचने की बात है। लेकिन यहां जिन शब्दों का इस्तेमाल तुलसीदास जी ने किया है मित्रों, वो बहुत अद्भुत है। और यहीं पर हम प्रेम के अलग अलग स्तर और प्रेम की शक्ति को कन्वर्ट होते हुए देखेंगे कि किस तरीके से स्तर पर लगातार राम बढ़ते चले जाते, स्तर पर यानी कि चेतना के स्तर पर, शक्ति के स्तर पर बढ़ते चले जाते हैं। राम धनुष के निकट पहुंच गए हैं तो उन्होंने सबसे पहले तो पूरी की पूरी सभा को विलोका, और इसी विलोकने में उन्होंने सीता को चितई भी कर लिया। चितई करने का मतलब है कि अब उन्होंने आंखों का इस्तेमाल नहीं किया है, चित शब्द का, आप शब्द पर जाइए, चेतना का इस्तेमाल किया है। अब वो आंखों से नहीं देख रहे हैं, चेतना से देख रहे हैं, यानी कि अब सीता का जो सौंदर्य है, सीता को जो प्राप्त करने की उनकी इच्छा है, जो अभिलाषा है, जो पवित्र भाव है, वह अब आंखों से उतर के चेतना में समाहित हो गया। तो अब वो चितय कर रहे हैं। और इसके बाद राम ने फिर आगे देखिए कि क्या हुआ, इसके बाद उसे ताका, और ताकने के बाद उसे विलोका, फिर देखा। मेरे पास इतना वक्त नहीं है कि बहुत विस्तार के साथ मैं इन शब्दों की व्याख्या पर जाऊं, लेकिन यदि आप इसे थोड़ा सा विस्तार से जानना चाहते हैं तो मित्रों, राम को लेकर के भी मेरी एक किताब है, और चूंकि दीपावली का अवसर है तो मैं उस किताब का नाम आप लोगों को बता देना, अपना धर्म समझ रहा हूं, वो है आप भी बन सकते हैं राम, यानी कि आप भी बन सकते हैं राम। मैंने यही दिखाया है इसमें कि राम कैसे धीरे धीरे अपनी चेतना को विशुद्ध करते चले जाते हैं। तो आप जब उसके अंश पढ़ेंगे तब आपको ये बातें और ज्यादा स्पष्ट हो जाएंगी। तो फिर होता क्या है कि देखिए, धीरे 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 जो राम है, सीता के सौंदर्य को, सीता के प्रति अपनी भावना को चेतना से एक आध्यात्मिक ऊर्जा के स्तर तक ले जाने लगते हैं। धीरे 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 वो ऊर्जा के स्तर तक ले जाने लगते हैं। और जब धनुष टूटा है उससे पहले आप फिर एक शब्द देखेंगे, देखा, सीता को देखा। सीता को देखा, यानी कि सीता को अब खुल कर देखा। खुल कर देखा का मतलब है कि अब तो ऊर्जा के विस्फोट का क्षण आ चुका है। जो कुछ भी करना है अब एक क्षण में करना है, या तो धनुष टूटेगा या धनुष टूटने से रह जाएगा। धनुष टूटेगा तो सीता मिलेंगी, धनुष नहीं टूटेगा तो न केवल वो सीता को ही खो देंगे बल्कि बहुत ज्यादा बदनामी भी होगी। और याद रखिए, इससे पहले सीता भी मां पार्वती से प्रार्थना कर चुकी हैं कि राम मुझे मिले, तो वो सीता को भी निराश करेंगे। तो जब देखा है तो वो देखा, यहां उन्होंने संपूर्ण अस्तित्व के साथ देखा। यहां जो देखा शब्द का इस्तेमाल हुआ है, जिसमें उनका फिजिकल, उनकी फिजिकल एनर्जी भी है, उनकी इमोशनल एनर्जी भी है, उनकी स्पिरिचुअल एनर्जी भी है, उनकी मेंटल एनर्जी भी है, और इन संपूर्ण ऊर्जाओं का इस्तेमाल करके राम धनुष को उठाते हैं और धनुष को का संधान करके बीच से दो टुकड़ों में विभाजित कर देते हैं। तो यहां ऊर्जा का विस्फोट हो जाता है जो अंत में परिणाम की प्राप्ति में तब्दील हो जाता है। तो मित्रों, यहां बहुत ही खूबसूरत प्रसंग है, बहुत ही भावुक प्रसंग है और बहुत ही पवित्र प्रसंग है कि किस तरीके से प्रेम की भावना को कितनी बड़ी शक्ति में परिवर्तित किया जा सकता है। तो मित्रों, राम के माध्यम से मैं भी उनसे प्रार्थना करूंगा कि उनमें जो शक्ति थी पवित्रता की और प्रेम को इस तरीके से एक बहुत बड़ी ऊर्जा में तब्दील करने की, वह शक्ति संपूर्ण विश्व को वे प्रदान करें। तो दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है कि आज शुक्रवार है, कल और परसों दो दिनों तक लाइफ मैनेजमेंट नहीं आएगा, तो सोमवार को आप सबसे फिर मुलाकात होगी और फिर ढेर सारी बातें होंगी। तो अब तब तक के लिए मैं आप सबसे इजाजत चाहूंगा, मेरा अभिवादन स्वीकार करें, नमस्कार।